ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ, ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚਤੁਰਾਈ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ, ਬੜੀ ਛਲ ਔਰ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਚਤੁਰ ਹੋਏ ਇਸ ਚਤੁਰਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੇ ਲਖਬਾਰ, ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲੈ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ, ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ, ਸਹਿ ਸਿਆਣ ਪੈ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਿਆ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਔਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਮੀ, ਅਲਖ, ਅਗਮ, ਆਪਣੀ ਧੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਹੰਕਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਮ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨਾਮੀ ਤੋਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੋਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਕਲ ਦੀ ਵੀ ਨਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਅਨਾਮੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵਰ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੀ ਵਰ ਹਨ? ਪਹਿਲਾ ਵਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੀਸਰਾ, ਉਹ ਅਨਾਮੀ ਦੀ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਚੇਤ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਜਿਤਨੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਗਿਣਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹਨ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਕੇਤੇ ਇੰਦ, ਚੰਦ, ਸੂਰ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ, ਦੇਸ਼, ਇਤਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਵਰ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਿੰਜਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ 84 ਲੱਖ ਪਿੰਜਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉੱਤਮ ਭੋਗੀ ਜੂਨਾ ਔਰ ਨਿਚਲੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਰਮ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਦੇ ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ उसने खत्म हो जाना है। यानी कि जो भी पिंजरा उसनु दिता जांदा है एक निश्चित सीमा तक दिता जांदा है, उस सीमा दे बाद वो पिंजरा उसके कोलों वापस ले लिया जांदा है। यानी कि जदों भी ये जीवात्मा जिस भी पिंजरे दे विच आंदी है हर पल हर कड़ी मौत दा नगाड़ा उसके सिर ते वजन लग जांदा है। और जो जो ये समय बीतता जांदा है उसकी उम्र घटती जांदी है। असी खुशियां मनांदे हां, इस जगत नूं भोगण च लगे हां, विषय विकारां दे अग दे विच लगे हां, सानू चेता ही नहीं होश ही नहीं कि किस तरीके दे नाल सानू इत्थे कैद कर लिया गया है और इस जीवात्मा दा उद्धार किस तरीके दे नाल हो सकदा है। उसका इक्को ही रस्ता है कि वह अनामी जो है अकाल पुरुष दे जरिए इस जगत दे विच किस तरीके दे नाल व्याप्त हो रहा है, किस तरीके दे नाल विचर रहा है, जिस तरीके दे नाल उसने रचना रची है उस तरीके दे नाल ही असी इस रचनाकार दी इस रचना चो निकल करके उस रचनाकार दे नाल मिल सकते हैं। और ये मिलन नू ही सच्ची मुक्ति किया गया है। और जितने भी कर्म कांड जगत दे विच मौजूद ने वह विचार करके देखो किस तरीके दे नाल इस जीवात्मा का उद्धार कर सकते ने। यह जीवात्मा चाह करके भी इस चतुराई चो निकल नहीं सकती। इस करके संत सतगुरु जड़े आंदे ने वह अकाल पुरख की समर्था ताकत अवतार दे रूप दे विच आंदे ने, वो सारी ताकत उन्हां दे विच मौजूद होंदी है। यानी कि किस तरीके दे नाल रचना रची गई है ये आवाज और प्रकाश दे जरिए, यानी हक दी आवाज परमात्मा दी आवाज, वो सच यानी कि परमात्मा, वो सच परमात्मा किस तरीके दे नाल आवाज और प्रकाश दे जरिए जड़ और चेतन नू आधार दे रहा है। जो जो ये आवाज जड़ी है मंडल दर मंडल थल्ले उतर दी है, जिस तरह एक सूरज है उस दियां किरणा अलग अलग मंडला च होकर के निकल दियां ने, सानू कोई नजर नहीं आंदा उस दे विच कितने रंग ने, पर अगर उसनू इस प्रिजम दे विचों पास करिए ते असी पर्दे विच बहुत सारे रंग देख सकते हैं अलग अलग किस्म दे, पर इन्हां अखां दे नाल सानू नजर नहीं आंदा। उसे तरीके दे नाल ए जो गुण है वह अथाह समुंदर उसकी बूंद वह अथाह गुणा का स्वामी जो है उसका एक गुण है आवाज और प्रकाश, ये किस तरीके दे नाल ए सारे जगत दे विच व्याप्त हो रहा है इन्हां अखां दे नाल नजर नहीं आंदा। यही चतुराई है यही परम है। यानी कि काल ने एक पर्दा मन और माया दा, मन कौन है एक एजेंट है इसका काल का, उन्हें एजेंट नू अपने हर जीवात्मा दे नाल लगा रखा है और वह बड़ी चतुराई और खूबसूरती दे नाल अपना काम कर रहा है। की काम है जीवात्मा नू परमा करके रखना, यानी कि उसनू खबर ना होए कि वह किस देश की वासी है, किधरों आई है, किधर फसा ली गई है और किस तरीके दे नाल वह वापस अपने घर नू जा सकती है। इस जगत दे जितना भी काम करना है मन की अपनी कोई ताकत नहीं, वह भी सतगुरु को ताकत ले रहा है। वह सतगुरु की ताकत इस आत्मा दे विच भरपूर मात्रा च मौजूद है और ये मन जो है इस आत्मा दे कोलों ताकत लैंदा है। आत्मा की ताकत की है ख्याल, यानी कि ख्याल नू अपने अंदर लैंदा है और नौ द्वारा चो निकल करके ये पूरे ब्रह्मांड दे विच ये सारी ताकत नू फैला दिंदा है। अपने घर का भी काम करता है और उस नू फैलाण का भी काम करता है। फैलांदा इस करके है कि ये सिमट ना सके। अगर ये ताकत ख्याल सिमट गया दसवें द्वार पहुंच गई तो जीवात्मा नू और जो परमात्मा का गुण है आवाज और प्रकाश का उसनु दीदार हो जाएगा, उसनु आवाज सुनाई देन लग जाएगी। अगर उसनु आवाज सुनाई दे गई ए दीदार हो गया तो ए जीवात्मा अपने निरत और सुरत दे जरिए उस प्रकाश नु देखदी होई और उस आवाज नु सुनदी होई उसी डायरेक्शन दे विच पौड़ी दर पौड़ी चलदे अपने घर पहुंच जाएगी। अगर ए सारिया जीवात्मा इस लोक तो निकल करके अपने घर पहुंच गईयां ते विचार करके देखो इस जगत की खूबसूरती की रह जाएगी, चारों पासे जड़ ही जड़ रह जाएगा। इस जड़ की क्या कीमत है, वो काल ने इस जड़ और चेतन नु कायम रखन वास्ते इन्हां दोनों का जो मिश्रण किया है ये 84 लाख पिंजरिया का बड़ी खूबसूरती और चतुराई दे नाल जीवात्मा नु परमा करके इस जगत दे विच रोक करके रखा है। संत सतगुरु आंदे ने सिर्फ इसी वास्ते आंदे ने, चेतान वास्ते आंदे ने, होशियार करन वास्ते आंदे ने कि तुसी जागो अपने घर की खबर लो। ये घर तुहाडा नहीं है, ये जगह तुहाडी नहीं, ये देश तुहाडा नहीं। जिन्हां वस्तुआं नू इस जगत दे विच असी सच्चा करके जानन लगे हां क्यों, क्योंकि माया दा पर्दा है, होमे दा विकार है, होमे की है मेरी मैं करके इस जगत विच विचर रहे हां। और जो असली मैं है परमात्मा, परमात्मा दा अंश यानी कि ए आत्मा, ए मैं दी अपनी खबर नहीं, ए यह करके इस जगत विच फसी है। यह शरीर मेरा है, यह घर मेरा है, ए वस्तुआं मेरिया ने, ए भोग मेरे ने, ए संबंध मेरे ने, ए सारे सारे नाशवान ने। यानी कि जिस दे नाल यह लग गया ए नाशवान है और ए जगत दे विच मैं जो है ए यह दा संग करके दुख का कारण है। अगर यह नु त्याग दे तो इसकी मैं कोई दूर नहीं है, वो परमात्मा किते होर नहीं मिलता। विचार करके देखो उस परमात्मा का यह जो गुण है जड़ और चेतन सब दे विच है, निचले जामे च भी है, उतले जामे च भी है, सूक्ष्म शरीर भी कारण लोकां दे विच हर जगह यह मौजूद है, पर इस नु प्राप्त सिर्फ और सिर्फ मनुखे जन्म विच कीता जा सकता है। इस तो विचार करके देख लो मनुखे जन्म की कितनी कीमत है, उस दे नाल एक कीमत दिती गई है, एक पूंजी दिती गई है, वो पूंजी केड़ी है, स्वासा की पूंजी। इस स्वासा नु खर्च करके ए जीवात्मा ने एक पिंजरे दे विच यानी मनुखे पिंजरे दे विच जन्म दे विच आ करके उसने अपने घर का काम करना सी। असी कदे भी अपने घर का काम नहीं किया, असी पराए गदे बन करके बैठे हाँ। सवेर हुंदी है तियां पुत्र जमीन जदार कारा मोटरा फैक्ट्रिया कार बंगले इन्हां दे विच असी सारा दिन बिता देंदे हाँ। रात हुंदी है फिर बिस्तरे ते पे पे भी असी यही ख्याल करदे हाँ, इन्हां दे विच घूमदे रहिंदे हाँ, इन्हां दे विच विचरदे हाँ। यानी कि उस स्वासा की पूंजी जिहड़ी सानू मिली सी असी 24 घंटे खराब कर दिते, पर उस पल नू उस कड़ी नू यानी कि अपने घर दे काम दे करन नू ओ ना कड़ी आई ना कदी काम कीता ना चेते, यानी सुते आए और सुते ही चले गए। और किस चतुराई दे नाल काल ने ए साडे कोले पूंजी खो ली। इसे तरीके दे नाल दिन दे दिन हफ्ते महीने साल बीत जांदे ने, सारी उम्र लंघ जांदी है, बचपन तो जवानी है, जवानी तो बुढ़ापा है, असी अपने घर दा काम नहीं कर सके। ए काम ते कदी सत्संग जी किसे दे पूरे होए नहीं। विचार करके देख लो इतिहास दे विच वड्डे वड्डे योद्धा होए ने, देशां मुल्कां नू उन्हां ने लुट करके खा लिया, राज खंभाल ले, पर उस तो बाद जदों घर गए ने खाली हथ गए ने। यानी कि रोंदे पिटदे आए और रोंदे पिटदे चले गए और दोबारा बार बार इसे जगह दे भी जम्मे और मरे। ए मनुखा जन्म सानू बार बार जन्म मरण दा ए भुगतान करन वास्ते नहीं मिलिया, ए सानू मिलिया है अपने घर जान वास्ते, चेतन वास्ते, जागण वास्ते, और असी हां कि जागण दी कोशिश ही नहीं करदे। संत महात्मा आंदे ने ए वाणी देंदे ने, सचखंड तो वाणी दिती जा रही है, असी इस वाणी दा क्या लाभ उठाया। सानू 50 साल हो गए वाणी सुनदिया, किसी नू 10-15-20 साल हो गए ने, अज तक असी इस वाणी दे उपर अमली जामा नहीं पहनाया। हुण विचार करके देखो ओ जो वस्तु साडे इस जगत दे विच जड़ और चेतन नू आधार दे रही है, ओ कितनी तकनीकी वस्तु है, कितनी विशाल और ऐसी चेतनता लेकर के आंदी है, और उस चेतन वस्तु नू क्या असी जड़ वस्तुआं दी आराधना करके प्राप्त कर सकते हैं। इस जगत दे विच असी परमात्मा नू प्राप्त करन लई किस तरीके दी आराधना कर रहे हैं? कोई ग्रंथा पोथियां नू मथे टेक रहा, दिन रात उन्हां नू रटन च लग रहा, उहदे विच है की है? उहदे विच परमात्मा दा हुक्म है, ए रस्ता दित्ता है, संतां दी शरण विच जाओ, उन्हां दी शरण दे विच जा करके उन्हां दे उपदेशां दा पालन करो और अपनी हस्ती मिटा करके इस आवागमन तो मुक्ति दा साधन इकट्ठा कर लो। पर असी उन्हां दे कोल जांदे नहीं, उन्हां दी जो वाणी है उन्हां नू मत्था टेक देंदे आ जां पढ़ी जांदे आ, और दूसरे पासे की देखदे आ? इस जगत दे विच जड़ वस्तुआं दी आराधना कितने व्यापक रूप विच हो रही है। चाहे किसी भी मुल्क विच चले जाओ, हर पासे पत्थर ही पत्थर है, तालाब ही तालाब है, कोई पहाड़ां विच खोज रहा है, कोई समुंदर विच खोज रहा है, कोई आकाश विच विचर रहा है, कोई किसी जगह, कोई किसी जगह। यानी कि वो परमात्मा दा गुण अगर किसी जगह मिल सकदा है तो सिर्फ इंसानी जामे दे विच, वो भी 10वें द्वार दे विच। असी 9 द्वारा जी फसे, उस 10वें द्वार पहुंचने की कोशिश नहीं करते। अगर 10वें द्वार पहुंचांगे नहीं तो इस गुण किस तरीके दे नाल प्राप्त करांगे? असी संत सतगुरु को चले गए, नाम ले लिया, अमृत छक लिया, हुण विचार करके देखो ये सारिया ही वस्तुआं जड़ ने, ये नाम की है? ये लफज नाम नहीं है, ओ नाम कोई अखरी नाम नहीं है, ओ महान चेतन, ओ सत्ता हैगी है जड़ी, उस अनामी दा एक गुण है। ओ गुण किस तरीके दे नाल जड़ और चेतन नू आधार दे रहा है, और किस तरीके दे नाल असी जप करके उस नू प्राप्त कर सकते हैं? ना तो जप दे विच परमात्मा है, ना किसी आराधना दे विच परमात्मा है, उस दा एक कोई गुण है उस नू प्राप्त करन दा, और ओ गुण केड़ा है? प्रीत, प्रेम दा गुण। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो, ओ परमात्मा की है? प्रकाश और आवाज, और प्रकाश और आवाज नू अगर कोई जीवात्मा प्राप्त करना चाहती है ते प्रेम, प्रेम दे नाल ही उस नू प्राप्त कर सकती है। युगा युग तप करदे रहो, जप करदे रहो, पुराना इतिहास चुक करके देखो, हजारा साल जप करदे रहे ऋषि मुनि, तप करदे रहे, कोई जमीन दे अंदर, कोई आकाश विच, कोई हवा दे विच, उन्हां ने भोजन नहीं लिया, भुखे रह करके, एक टंग दे खड़े होकर के, चौकड़ी मार करके युगा युग तप कीते ने, उस दे बाद भी ए तुहानू नू प्राप्त नहीं कर सके। असी ब्रह्मा नू पूछदे हां, विष्णु नू पूछदे हां, शिव जी नू पूछदे हां, जदों उत्थे जा करके देखदे हां ओ भी उस परमात्मा दे अकाल पुरख दे ध्यान दे विच लगे होए ने। हुण विचार करके देखो अगर जीवात्मा इन्हां नू परमात्मा करके पूछदी है ते उत्थे जा करके सानू फिर उस अकाल पुरख दी आराधना करनी पवेगी, ते सोचण दे विचारन दा गल है कि सानू हुणे ही आराध लैणा चाहीदा या शिव जी नू या ब्रह्मा नू प्राप्त करन दे बाद प्राप्त करना चाहीदा, ए विचार करना चाहीदा। कोई निंदिया की गल नहीं है, कोई वड्याई की गल नहीं है, ये बड़ा सोचण और विचार करन दा मजबून है। ये मनुखा जन्म बड़ा कीमती ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਤੁਰਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੇ, ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਇਸ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਚੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਜੜ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਖਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਹਿਲ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਵਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਵੈਤ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਨੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਂਗੇ ਉਸੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਧੀਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਗੂੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਪਬੱਤੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਸੀ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲੀ ਜਾਵਾਂ ਪਹਿਨਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਾਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੜ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਲੰਬੀ ਮੋਟਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀ ਬੈਠੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਸਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਠ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਜਾਗੇਗੀ। ਇਹ ਜਗਤ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਮਲਣੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਖਾਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ, ਕੰਨ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਸੁਰਤ ਸਿਮਟਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਭਿਆਨਕ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1000 ਬਿੱਛੂ ਕਿਸੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਠਾ ਕੱਟਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਲਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਉਹ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੋਂਡੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਯਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਲੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜੜ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਜੜ ਵਸਤੂਆਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਧੁਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੌ ਦੁਆਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ हजार हृदय के विचों जड़िया सूक्ष्म किरणा उठियां ने वह तिरंगा उठियां ने उन्होंने मुखार बिंचो निकल करके साढ़े कन्ना के नाल लफज बन करके टकराइया ने इसे करके असी उन्होंने नाम की संज्ञा देंदे हां। तो हुण विचार करके देखो क्या वह नाम दो चार पांच लफज ही ने उन्होंने हृदय के विचों कितनिया तिरंगा उठदिया ने जिस वेले सत्संग दे विच आ करके बैठते ने कितनिया तिरंगा वह सचखंड की ताकत लै करके इस जगत के जड़ और चेतन नूं आधार देंदिया ने। कदी असी विचार की है कदी विचार नहीं की कदी सोचा नहीं कदे वह सारा का सारा नाम है। अगर ये दो चार लफज नाम ने तो वह भी नाम ने और वह सारे नाम नूं भुल के दो चार लफजा का जाप करके कदी वह परमात्मा इस दे विच कैद नहीं हो सकता। यह समझण का विषय है विचार करन का विषय है कि यह जप की है जिस तरीके दे नाल ओ जितनिया भी तिरंगा साडे कान दे नाल लफज बन के टकराईयां ने उन्हां नूं भी सानू जपना पेगा। हुण इतने सारे सत्संग हुंदे ने इतने इतने लफज साडे कन्ना नाल टकरांदे ने इह सारा जप किस तरीके नाल हो सकदा है। उस दे विच जो निर्देश है जो हुक्म है जो बाणी सचखंड तों ताकत दे नाल साडी चोलियां विच तकसीम कीती गई है उस निर्देश दे उपर अमली जामा पहनाना जो है यह है सच्चा जप। यह है उस नाम का जप जिस नाम नूं असीं भुल्ली बैठे हां और इस सारे नाम नूं भुल करके एक दो चार पांच लफजां नूं जो कि जड़ ने इन्हां दा जाप करके कदी भी असी उस परम चेतन यानी कि उस प्रकाश और उस आवाज नूं प्राप्त नहीं कर सकते। हुण उस दे बाद गुरु साहब उपदेश करदे ने कि सानू नाम दे दिता गया धुन दे दिती गई यह 100% झूठ है। झूठ क्यों है क्या विचार करके देखो अज तक किसी ने धुन सुनी है कोई विरला जीवा पादना वाली है उसका एक अलग रख दो उसका बाद ही विचार करांगे। बाकी सारी की सारी सृष्टि जड़े इस संकार दे विच बैठे ने असी अमृत छक लिया या नाम लै लिया उन्होंने अज तक धुन नहीं सुनी अज तक यह जप करके उस प्रकाश का दीदार नहीं किया क्यों उसकी की वजह है क्या इस नाम दे विच कमी है क्या उन्होंने वचन जो किए ने वचन झूठे ने यह विचार करके देखो असी अल्लाह अल्लाह करते सी राम राम करते सी वाहगुरु करते सी यह सारे लफज छड़ के असी स्वामी स्वामी करन लग गए क्या स्वामी स्वामी करन दे नाल क्या परमात्मा मिल जाएगा। अगर राम कह के राम नहीं मिलिया अल्लाह कह करके अल्लाह नहीं मिलिया वाहगुरु कह कर वाहगुरु नहीं मिलिया तो विचार करके देख लो स्वामी करके भी स्वामी नहीं मिलेगा क्यों क्या स्वामी च कमी सी क्या सतगुरु च कमी सी क्या नाम च कमी सी नहीं कमी किदे विच सी कमी जपण वाले च कमी सी जिसने नाम लिया उस दे विच कमी सी क्यों उदे विच होमै दी मैल सी ना उसने सतगुरु दे बचना उपर अमली जामा पहनाया ना कदी उना दे हुक्म दी पालना कीती ना कदी अपनी होमै दी मैल मिटाई ना अपनी हस्ती नूं कुर्बान कीता ओ ते मेरी मैं दे विच रचिया रहा जगत दे विच झूठियां वस्तुआं कठियां करन लग गया ते उस दे बाद उहदे लई इह जिहड़ा नाम है इह सचमुच जड़ वस्तु है और तुन है इह बिल्कुल झूठ है। और अगर इह 100% सच भी है किन्हां वास्ते सच है जिन्हां ने अपनी हस्ती मिटाती जड़े कुर्बान हो गए अपने सतगुरु के उपर यानी विचार करके देखो गुण की है एक प्रेम दा प्रेम दे नाल सिर्फ सतगुरु के जरिए सतगुरु चो कौन ने वह भी महाचतुर ने अगर काल चतुर है तो उसकी चतुराई चो निकलन वास्ते इह जिस रचना नूं बड़ी चतुराई नाल चला रहा है वह महाचतुराई दे नाल ही इस रचना दे विचों इस चतुराई चो निकलिया जा सकता है। तो इसका एक ही भाव है कि सतगुरु की शरण चाहिए सतगुरु की शरण लैन लग के परची कटाण वाली शरण नहीं है। यह जीवात्मा कोई भी होए सत समुंदर पार इस सृष्टि दे विच मनुखे जामे दे विच किसी भी कोने दे विच व्याप्त है जड़ चेतन किसी भी तरीके दे नाल उस परमात्मा नूं किसी भी रूप दे विच देखदी है परमात्मा दा कोई रंग नहीं कोई रूप नहीं कोई रेख नहीं कोई आकार नहीं तो फिर किस तरीके नाल कह सकते हैं कि सतगुरु जो आकार लै करके आए ने वह परमात्मा है क्या बाकी होर जड़े आकार ने उन्हां दे अंदर परमात्मा नहीं है। एक जीवात्मा की अपनी मौज है कि वह किस रूप दे विच कर्मा की वृत्ति अनुसार उस परमात्मा की खोज कर रही है। अगर वृत्ति अनुसार उसनू सोझी नहीं है उसनू समझ नहीं है कि वह इस जगह नहीं पहुंच सकती सतगुरु का रस्ता नहीं पता पर उसने यह ठान लिया कि मैं अविनाशी नूं प्राप्त करना चाहती हाँ उस परमात्मा नूं प्राप्त करना चाहती हाँ तो चाहे उस परमात्मा नूं बच्चे दे रूप विच देखे चाहे जड़ चेतन आधार किसी रूप दे विच देखे पर असली गल यह है कि प्रेम दे नाल अपने अंतर की सफाई कर रही है। परमात्मा क्या है विचार करके देखो वह सुची और उची दात वह गुण वह गुण के जरिए सब जगह व्याप्त है यह गुण साडे अंदर मजूर है हर पल हर कड़ी यह अमृत तारा दसवें द्वार हो रही है। क्या किसी ने दीदार किया अज तक दीदार नहीं किया तो क्या यह झूठ है कि परमात्मा हर एक दे अंदर मौजूद है नहीं यह झूठ नहीं है यह 100% सच है। वह सच कदों है जो अंतर की सफाई हो जाए क्यों क्योंकि यह सचो सच वस्तु है यह निर्मल और चेतन साफ वस्तु है और निर्मल और चेतन साफ वस्तु सिर्फ साफ और सुचे भांडे के विच ही प्रगट होंदी है। इस शब्द की इस गुण की अपनी मर्यादा है और जब तक यह जीवात्मा उस मर्यादा के अधीन नहीं आएगी कदे भी सो गुरु का नाप लाप लो सो नाम लै लो जितने मर्जी कर्म कांड कर लो ए सारिया मन दिया चतुराईया ने कदी भी जीवात्मा चाह करके भी इस प्रमाण चो निकल नहीं सकती ना आज तक निकल सकी है ना कदी निकल सकेगी। अगर इस चतुराई चो निकलेगी तो सिर्फ सतगुरु की शरण लै करके निकलेगी और अंतर की सफाई करके वह सफाई किस तरीके नाल हो सकती है। दस कर्म इंद्रिया ने पांच कर्म इंद्रिया ने पांच ज्ञान इंद्रिया ने उस तो पर मन बुद्धि चित और अहंकार ने यह 14 वस्तुआ की सफाई सफाई का की भाव है इन्हों का निश्चल होना। कदी विचार करके देखो असी नाम का अहंकार पढ़ते हैं अमृत का अहंकार पढ़ते हैं किसी ने एक भी इंद्री नूं शांत करन दी कोशिश कीती है? असी तो दिन रात इन्हां नूं पड़कान च लगे हुए हैं ये बालन कट्ठा कर रहे हैं। विचार करके देखो ये मन विषय विकारां दी अग विच दिन रात जल रहा है और असी सिर्फ उहदे विच बालन पा रहे हैं। इस जगत दे विच इक लालच एक लोभ एक अवगुण है इस मन का। हुण लालच नूं कदी असी मिटाण दी कोशिश कीती कदी संतोष का गुण अंदर पैदा करन दी कोशिश कीती कदी भी नहीं। असी इस लाभ नूं पाण वास्ते इस जगत दे विच होर वड्डे वड्डे कम करदे हां ऐसे भयानक कर्म करदे हां कि अपने गुरु भैणा भरावां दे ही हक लिया के कर खा लैंदे हां। उसनूं की कहा जाता है एक पासे असीं अहंकार भरदे हां एक मत चलाता एक धर्म चलाता कि असीं अंडा मीट शराब नहीं पींदे। हुण विचार करके देखो बड़ी सुंदर गल है कि असीं अंडा मीट शराब का सेवन नहीं करते। बहुत सारे कर्मां तो बच गए बहुत सारियां होर गल्लां तो भी बच गए इस जीवात्मा का बहुत सारा भला भी हो गया बहुत सारा भलिया होने के बाद भी यह कैदी रही और कई तरीके के कर्म करती रही। क्यों? क्योंकि घर आ करके जड़े असीं लोगों का हक मारिया सी ना हक पराई नानका उस सूअर उस गाय गुरु पेर हामा ता भरे जो मुड़दार ना खाई। असी तो मुड़दे कट कट के खा रहे हैं हुण मुड़दे क्या निचली जूना सिर्फ जानवर और परिंदे ही ने क्या हक की हैगा? हक उस ओ है जड़ा असी अपने भैणा भरावां दा और इस जगत दे विच कम धंधा करन वक्त लोगां दा मार करके कर ले आंदे आ और घर ते टेबल ते बैठ के संबंधी और परिवार के जितने प्यारे ने धिया पुत्र मां प्यो सारे मिल करके जदों खांदे ने ए इंसान दा मास और इंसान दा खून है। और विचार करके देख लो ये जितने भी जप असी जप रहे हैं ये कदे सानू पार लैके नहीं जाणगे जब तक ये खून पीना बंद नहीं करांगे ये मांस नूं त्याग नहीं करांगे तब तक अंडा मीट शराब भी सानू बचा के नहीं ले जा सकता। बहुत सारे कर्म बच गए पर बहुत सारे असी बना भी ले। हुण विचार करके देखो कि असी इस जगत की रचना तो किस तरीके नाल निकल सकते हैं अगर ये वस्तुआं भी जड़ ने तो उस दे बाद असी किस तरीके नाल इसका उद्धार कर सकते हैं। जब तक असी ये सारी मन की सफाई नहीं करते वो एक ज्ञानेंद्री है केड़ी अख अख दे जरिए असी किस भयानक और सूक्ष्म रूप दे विच जगत दे विच भ्रमण करते हुए कर्म बनाते हैं। सतगुरु इसका एक सिर्फ एक इशारा करते ने निमक घड़ी काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे एक घड़ी रस मांडे फिर बहुत बहुत पछतावे। साध संगत जी बहुत बहुत पछतावे का पता की भाव है जिसले आखिरी समय अख बंद होंदी है ना उस वेले की होंदा यमदूत आ करके वाला तो पकड़ के घसीड़ के ले जाते हैं उस वेले सिर्फ पछताना बाकी रह जाता हथ मलने बाकी रह जाते हैं पर उसले कोई उपा नहीं चलता कोई कम नहीं चलता कोई साडा हुदम जो है किसी कम नहीं आता। क्यों? क्योंकि जींदे जी असी कदे भी एक कर्मां नूं बनाना बंद नहीं किया। सेवा करत ओ निष्कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी ओ अथत गुणा दा स्वामी ओ परमात्मा ओ जिस गुण दे रूप विच मौजूद है उस गुण नूं असी सिर्फ और सिर्फ ए सारे निष्कामता दी सेवा अपने सतगुरु दी सेवा करके उस नूं प्राप्त कर सकते हैं। हुण सतगुरु दी सेवा सिर्फ हत्थां पैरां दे नाल नहीं होंदी हुण जिहड़ियां सत समुंदर पार बैठियां ने ओ ते सतगुरु दे दीदार तक नहीं कर सकदियां कितनियां तरसदियां सन ओ जीवात्मा बाबा सावन सिंह जी दे टाइम दे विच किस तरीके दे नाल असीं अपने गुरु दा दीदार कर सकीए ते गुरुआ जी ने रहमत करके उन्हां नूं अपना आकार भेजिया एक फोटो भेजी और उस नूं काल ने किस चतुराई दे नाल इस जगत दे विच उन्हां दे अपने घर दे विच ही किस तरीके दे नाल उन्हां दे स्टालां ते आकार दिते जा रहे ने। क्या उन्होंने यह सानू सिखाया सी कि जड़ वस्तुआं नूं असी पूजना हैगा उन्हां दी आराधना करनी है? संता दी वाणी विचार करके देखो स्वामी जी ने कहा पाठ पढ़ाया सी किस रस्ते ते सानू चलाया सी अज असी उन्हां दी कबर बना करके उन्हां नूं धूप बत्ती देंदे आं उन्हां दी फोटोआं कार्च लगा करके उन्हां दी धूप बत्ती देंदे आं और इन्हां जड़ वस्तुआं नूं पूज करके जप करके असी यह सोच के अहंकार च बैठे आ कि असी ते सतगुरु पर अहंकार एक आसान करके आ गए हैं कि असी नाम लै लिया है असी अमृत छक लिया बाकी काम सतगुरु दा है आपे करण करावन हार। साध संगत जी बड़ा उच्चा विचार है आपे करण करावन हार दा। साध संगत जी आज तक किसी नूं समझ नहीं आया असी मन दी चतुराई दे विच इहदे अधूरे हाथ कढ़ के आज तक हाथ ते हाथ धरे बैठे हैं किस करके कि अपने आप ही सानू जपा लेगा और पार लै जाएगा। हुण विचार करके देखो उसने सानू मनुखा जन्म किस वास्ते दिता सी ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਭੋਗ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਇਹ ਤੁੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਿਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜਾਮੇ ਦੀ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਪਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਤੁਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨ ਦੀ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਚਤੁਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦੇਵਤਾ ਠੱਗੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਕੜੀ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਤੁਰਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਕਰਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਕੜੀ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ। ਨਿਮਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕਿਆ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਲਕ ਚਪਕਦੇ ਹੀ ਨਿਮਕ ਕੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੋਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਕ ਕੜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ। 36,000 ਸਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਕ ਘੜੀ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੈ 36,000 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ 50 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਕਰੋੜ ਅਰਬ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਚਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਤ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਤਮ ਭੋਗੀ ਜੂਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਵਿਖੁੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਚਲੀ ਜੂਨਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗੁਣ ਜੜ ਔਰ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵਾਤਮਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਚਣ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਲੇ ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਭਾਵ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਅਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਨ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਈਏ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ 1-2-4 ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ 100 ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਵਣ ਔਰ ਪੂਰੇ 100 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁੰਬਾ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੁਨ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਜਪ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਮੌਖਿਕ ਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਖਿਕ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਕਨੀਕੀ ਵਸਤੂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵਾਤਮਾ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜੋ गुण है उस गुण दे विच लीन नहीं होंदी तद तक वह परमात्मा नूं प्राप्त करके आवागमन तो मुक्त नहीं हो सकती। इसी करके यही वजह है कि इस सृष्टि नूं रचिया हजारा करोड़ा युग अनगिनत समा हो गया, अज तक यह जीवात्मा अपने आप नूं जन्म मरण चो कढ नहीं सकी। उसकी इको ही एक वजह है कि इन्हें कदे भी उस परमात्मा नूं ठीक तरीके दे नाल प्राप्त करने की जो विधि है उसनु अपनाया नहीं। असि कोई पहली बारी संता की शरण च नहीं गए, जद की सृष्टि है संत भी आए ने और संत है ने। और अगर असि जन्म लिया है मां दे पेट चो लिया है, जब मां दे पेट चो गर्भ जून दे विच पुठे लटके सी उसले भी सतगुरु ने साडी संभाल कीती सी। जदों संभाल कीती सी क्या वह नाम नहीं सी? क्या यह मनुखा जन्म जदों दिता गया वह नाम नहीं सी? यह सारा का सारा नाम सीगा। असि आखरी नाम दे विच फस चुके हैं, यानी कि एक कार नू बदल के दूसरा दल बदल लिया। कदी दल बदलन दे नाल परमात्मा नहीं होंदी। संतां ने जो रस्ता दिता है जिथे है वो उथे ही रहो। इन्हां कर्म कांडा तो बच नहीं सकते, पर ठीक विधि नू अपनाओ, अपने अंतर की सफाई करो। जब तक अंतर की सफाई नहीं करांगे उस परमात्मा दे सच्चे और साफ गुण नू प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक इस गुण सानू प्राप्त नहीं होगा साडे अंदरों मैल नहीं निकलेगी, असीं कदे भी इस जीवात्मा का उद्धार नहीं कर सकते, यानी आवागमन तो मुक्त नहीं हो सकते। सतसंग जी अज दे इस रूहानी सत्संग भी गुरु साहबा ने चतुराई जो है ये मन दी है और बड़े तरीके दे नाल समझाया है कि इस चतुराई दे विचों असी उस महा चतुराई दे नाल जो कि सतगुरु लै करके आंदे ने उन्हां दी वध समर्था हुंदी है, इस समर्था चो सानू कढ सकदे ने। और इस बाद जो भी बाणी लई जांदी है उहदे विच जो भी तुकां लईआं जांदियां ने इह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप दे विच किसी ना किसी देश जात मजहब कौम या किसी विशेष मत दे नाल संबंध रखते ने। इत्थे ना तो कोई धर्म चलाने वास्ते असीं इकट्ठे होंदे आ, ना किसी दी निंदिया या वडियाई करन वास्ते। ये बड़ा सोचण समझण और विचार करन दा मजबून है। और इहदे विच गुरु साहब जो बाणी लैंदे ने उन्हां दा अर्थ ज्यादा देण दी कोशिश करदे ने, ना कि तुकां उचारण दी कोशिश करदे ने। अगर तुकां राग दे विच उचारियां जाणगियां जिस तरह कि असीं इत्थे पहले टेप लगा दिंदे आ रागां दे विच, क्या ये राग किसी नूं समझ आए ने? अज तक किसी नूं समझ नहीं आए। कोई उस रागनी दे विच मस्त होएगा, उस राग तक पहुंचेगा तो इस राग नूं जान सकदा है। बड़े उच्चे राग ने, इस करके सतगुरु जो ने ज्यादा जोर दिंदे ने साधारण लफ्जा दा कि हर मनुख नूं हर जीवात्मा नूं इसका अर्थ जो है समझ आ सके। तो मत कोई यह समझे कि इहदे विच जो तुकां ने वो शलोक दे रूप विच नहीं लईआं गईआं ते इह कोई वाणी नहीं है। यह वाणी सारी सचखंड दी है, सारी ताकत समर्था सचखंड दी है। और बड़े साधारण लफ्जा दे विच सतगुरु साडी चोलियां विच तकसीम करदे ने। तो साडा भी फर्ज यह है कि असीं इस नूं अभाव दे तरीके दे नाल ना देखिए। तो सतगुरां दा जो भाव हुंदा है सिर्फ इतना हुंदा है कि वह इस पहलू नूं समझा सकन अच्छे तरीके दे नाल। इस तों अगे उहनां दा कोई भी भाव नहीं हुंदा। कोई भी माई भाई अगे वध के कोई होर अर्थ इन्हां तुकां दा इस वाणी दा कढदा है ते उसकी अपनी मनमत है। गुरमत दा इस दे नाल कोई भी संबंध नहीं है।